فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نور من نور الله اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں احد سے احمد اور احمد سے کچھ کو احد سے احمد اور احمد سے کچھ کو سب کن مکن حاصل ہے یا غوث سب کن مکن حاصل ہے یا غوث میرے دوستو ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو چاہے وہ لفظ کن سے پیدا فرماتا اور بھری دنیا کو کہہ دے کہ فنا ہو جا تو فنا ہو جا فنا سے کہے بقا تو بقا ہو جائے اور بقا تو کہے فنا تو فنا ہو جائے قرآن فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے جو چاہے وہ کر دے مٹی کو چاہا تو مٹی سے انسان بنا دیا ہم انسان نہیں ہیں ہمارا بیس مٹی ہے انسان کا انسان بیس نہیں ہوتا کسی چیز کا بیس الگ ہے آپ سویٹ بنائیں تو سویٹ کا بیس سویٹ نہیں اس کا بیس شوگر رس ملائی بنائیں تو اس کا بیس دودھ ہے ملک بلڈنگ آپ بنائے تو بلڈنگ کا بیس بلڈنگ نہیں بلڈنگ کا بیس سیمنٹ کنکریٹ ہے ہر چیز کا بیس جو ہے اس کا الگ ہوتا ہے مل جل کر کے ایک چیز ہوتی انسان کا بیس انسان نہیں ہے انسان کی بنیاد مٹی مٹی نہ کبھی بولتی ہے نہ مٹی کبھی دیکھتی ہے نہ مٹی کبھی پکڑتی ہے نہ مٹی کبھی لیکچر دیتی ہے نہ مٹی کبھی نعت اور منقبت پڑھتی ہے دیکھا ہے کسی نے لیکن اللہ نے چاہا تو اس مٹی کو ایسی آواز دی کہ منقبت غوث پڑ رہی ہے
سبحان اللہ
اس مٹی کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ وہ سیاسم کا لیکچر دے رہے ہیں اس مٹی کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ یہ انسان روز و خواجہ بنتا ہے اس مٹی کو وہ شان عطا فرمائی کہ ہواؤں میں میٹلس کا ایک ماڈل بنا کر ہوائی جہاز اور پلین بنا کر اڑا مٹی میں کتنا پاور اس نے بھر دیا یہ کس کی قدرت ہے جب مٹی میں اتنا پاور دینے کا پاور ہے اس کو تو جسے غوث اور خواجہ بنا دے اس کو کتنا پاور مل جائے گا मिट्टी को पावरफुल बनाया और जिसको पावरफुल बना दे फिर उसमें अगर वो अपना पावर भरे, मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम किसी का दिमाग वहां तक नहीं पहुंच सकता, किसी की अक्ल उसे नहीं सोच सकती कि औलियाए किराम कितने पावरफुल है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है जब मैं किसी को अपना महबूब बनाता हूँ कुन तो समाउल लजी यस्माओ भी, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुन। अल्लाह ताला कान बनता नहीं है बल्कि अपने सिफते समी अपने सुनने के पावर का उसे मजहर और मरकज बना देता है। ये मिट्टी को कान अल्लाह ने दिया तो यहां से बोलने वाला है वहां खड़ा होकर सुन सकता है, लेकिन केप टाउन से अगर कोई बोले तो तुम्हारा कान नहीं सुन सकता। ये हमारे कान का पावर है, ये मिट्टी का पावर है। और अल्लाह फरमाता इस मिट्टी के पावर वाले कान को जब मैं पसंद कर लेता हूं तो उस कान में इतना पावर भर लेता हूं कि जिस तरह मैं दूर और नजदीक की बात सुनता हूं वो कान भी दूर और नजदीक की बात सुनता है। मैं उसका कान बन जाता हूँ। अल्लाह कान कैसे बनता है? क्या ऐसी वो राउंड बन जाता है अल्लाह माशाल्लाह? ये तो खूब है। अल्लाह ताला के कान बनने का मतलब ये है कि मैं वो फिर अपने कान की पावरफुल तकनीकी ताकत से नहीं सुनता है, एक्स्ट्रा पावर मैं उससे अपनी सिफत का अता फरमाता हूँ कि वो तहतुस्सरा में चींटी चले तो उसकी सरसराहट को भी सुन ले। और जिब्रील जब सिदरतुल मुंतहा पर अपना पर झाड़े तो वो यहाँ बगदाद में बैठ करके सुन ले। सुभान अल्लाह। जब मिट्टी में इतना पावर है तो जिसे अल्लाह अपनी सिफत का पावर अता फरमाएगा, मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम अगर इन्नल्लाह अला कुल्ले शयइन कदीर ही पर यकीन कोई कर ले तो वो कभी गुमराह नहीं बन सकता, कभी बदअकीदा नहीं हो सकता। इसलिए कि गौसे पाक की जो ताकत है वो उनकी अपनी नहीं है बल्कि रब की अता की हुई ताकत है। जैसे हर इंसान में जो ताकत है इंसान की अपनी ताकत नहीं, अल्लाह ने दी है तब वो ताकत नहीं है। इसी तरह औलिया को अल्लाह ने जो ताकतें दी हैं वो अपने कर्म से अता। अब शेर का मतलब सुनो। आला हजरत फरमाते हैं अहद से अहमद, अहद यानी अल्लाह ताला की जात। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दीजिए अल्लाह अहद है, अल्लाह एकता है। आला हजरत फरमाते अहद यानी अल्लाह ताला के वास्ते से अहमद को ताकत मिली। पूरी ताकत अल्लाह की, पूरा पावर अल्लाह का है, लेकिन अहद से अहमद को यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पावर मिला और अहमद से तुझको। और हुजूर के सदके में या गौस आपको कौन सी ताकत मिली? सब कुन मकुन हासिल है। बेशक अहद से अहमद और अहमद से तुझको सब कुन, कुन के माने हो जा। गौसे आजम फरमाते हो जा तो वो चीज हो जाती है, और फरमाते हैं मत हो तो नहीं होती। बेशक अंधे को कहे देख तो देखने लगता है। बेशक देखने वाले को कहते हैं मत देख तो नहीं देखता। चोर घर में घुसा था,
बेशक
उसकी आंखें थी, देखता था, जब ही तो अंधेरे में वहां तक पहुंचा था। अंधा होता तो कैसे पहुंचता? वो घुसा गौसे पाक दूसरे रूम में वजीफा और जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वजीफे में मशगूल होते हुए भी हर तरफ उनकी निगाह होती। आप कहेंगे कैसे? आप तो ड्राइविंग करते होंगे, कार के दोनों साइड मिरर लगा हुआ है, आप स्टेरिंग समझ रहे, नीचे कौन आ रहा देख रहे हैं कि नहीं, कोई आपको बताता नहीं, पीछे आपकी आंख नहीं है, देख रहे हैं कार आ रही है, ट्रक आ रहा है, कोई आप पूछे कि आप तो इधर देख रहे हैं ड्राइवर साहब पीछे कैसे नजर आ रहा है, तो बोले मेरे दोनों साइड में मिरर लगे, इंसान ने मिरर बनाया जो आगे पीछे के डिफरेंट को खत्म कर देता है, आंख आगे है नजर पीछे है, और अगर आजकल ऐसे मिरर निकले हैं पीछे लगा देते वो साइड में भी देखता, सामने नजर है राइट लेफ्ट आगे पीछे एक आंख है और हर साइड में वो आने जाने वाले को देखा, ये है दुनिया का आईना, और जिस निगाह के सामने अल्लाह की तजल्ली का आईना हो, जिस निगाह के सामने अल्लाह की तजल्ली का आईना हो, अल्लाह की तजल्ली के बारे में इस्लाम का आइडिया इस्लाम का नजरिया ये है कि अल्लाह की तजल्ली को एक साइड में महदूद नहीं किया जा सकता, अल्लाह की तजल्ली एक वक्त में सारी तरफ को देखती है, तो जिसकी निगाह के सामने तजल्लिए इलाही का आईना हो उसे सर घुमाकर देखने की जरूरत नहीं, आगे देखता है कायनात को, किसी को अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह कद रफ़अ ज़ियत दुनिया व अना अंज़रु इलैहा कमा अंज़रु इला कफ़ी हाज़िही इला यौमिल क़ियामा, बेशक ऐ लोगो अल्लाह ने सारी दुनिया को सारी कायनात को मेरे निगाहों के सामने रख दिया, पीछे की दुनिया हो वो भी सामने, इधर की दुनिया है वो भी सामने, इधर की दुनिया वो भी सामने, दूर की दुनिया वो भी सामने, नजदीक की दुनिया वो भी सामने, बेशक रफाली अब दुनिया मेरे लिए सारी दुनिया को सामने रख दिया है, और मेरी शान क्या है अना अंजरो इलैहा, मैं इस दुनिया को देखता हूँ कमा अंजरो इला कफी हाजरी, जैसे मैं हर वक्त हाथ की हथेली देखता हूँ पूरी कायनात को देखता हूँ, और कब तक इला यौमिल क़ियामा, और मेरी ये कैफियत देखने की कयामत तक रहेगी, कोई ये ना समझे मैं मरकर मिट्टी में मिल गया हूँ, जब जिंदा रहता है आदमी तो देखता है मरने के बाद नहीं देखता, मुस्तफा फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने ऊपर मत प्रयास करना, मैं जमीन पर हूँ जब भी देख रहा हूँ, जमीन के अंदर हूँ जब भी देख रहा हूँ, अरे मैं उस वक्त भी देख रहा था जब अभी आदम पैदा नहीं हुए थे, इसीलिए तो फरमाते हैं कुन तो नबीयं व आदमो बैन दीन वल मा, मैं नबी उस वक्त था जब हजरत आदम के बदन का खमीर और उसकी मिट्टी तैयार हो रही थी, मुस्तफा देख रहे थे आदम कैसे बन रहे हैं, नूर के रूह अंदर कैसे जा रही है, जब कोई नहीं देख रहा था तो मुस्तफा देख रहे थे, ये शान है मेरे रसूल की, आपको ये कुव्वत किससे मिली, अहद से, गौसे आजम फरमाते हैं मेरे जद्दे करीम पूरी कायनात को देख रहे थे, और कैसे देख रहे थे हाथ की हथेली की तरह देख रहे, ये कुव्वत गौसे आजम को मिली, गौसे आजम आप फरमाइए आपके देखने की कैफियत क्या थी, फरमाते नजर तो इला बिला बिल्ला ही जमान, नजर तो इला बिला बिल्ला ही जमान, कखर गलत अला हुक्मित के साथ ही, जैसे हथेली पर एक राई, राई जानते हैं राई का दाना जैसे हथेली पर रखता है कोई और उसे देखता है, ऐसे ही राई के दाने की तरह मैं पूरी अल्लाह की बनाई हुई कायनात उसके शहरों को देखता हूँ। अगर कोई पूछे नबी हथेली की तरह देखते हैं और गौस राई की तरह देखते हैं, गौस की नजर नबी की नजर से ज्यादा ऊंची हो गई। यही तो नासमझी है, समझ लेते तो दोनों के स्टेटस में डिफरेंस नजर आता। हथेली जब आदमी देखता है तो हथेली की सारी चीजें नजर आती हैं, और राई का दाना हथेली पर रख दो तो राई के दाने क्या हर तरफ नजर आएगा, लेकिन वो हिस्सा जो हथेली से चिपका हुआ है वो नजर नहीं आएगा। राई का एक दाना जो हथेली से चिपका हुआ है नीचे बिल्कुल, वो नजर नहीं आएगा और बाकी पूरा हिस्सा नजर आएगा। मेरे दोस्त ने रसूल का अदब कैसे सिखाया है, क्या ए लोगों मेरे गद्दे करीब सब देखते थे लेकिन जहाँ तक वो देखते थे उसमें थोड़ा हिस्सा मुझसे छुपा हुआ है। अहद से अहमद और अहमद से या गौस, मुझको सब कुन मकुन हासिल है या गौस, लेकिन गौस आजम उस अदब को मलहूज रखते हुए इरशाद फरमाते हैं, आला अदब फरमाते हैं, नबी अकरम के वसीले से मेरे होश को बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ा पावर और बड़ी एनर्जी हासिल है, उसको तुम समझ नहीं सकते, सब कुन मकुन हासिल है या होश। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सुराका हालत कुफ्र में उस वक्त अरेस्ट करने के लिए आए जब सरकार मदीने से मक्के से मदीना हिजरत कर गए। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ में थे, देखा सुराका आ रहा है, कहा या रसूल अल्लाह मक्के का नामी गिरामी खतरनाक पहलवान सुराका हमारी गिरफ्तारी के लिए आ रहा है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया अबू बकर ला तहजन अबू बकर परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ आता है आने दो। हजरत अबू बकर देख रहे हैं सुराका आगे आगे अल्लाह के रसूल पर हाथ डालना चाहा, मुस्तफा की निगाह कहर उसकी तरफ उठी और इरशाद फरमाते हैं या अर्जो खुदी है जमीन इसको अरेस्ट कर ले, ये मुझे पकड़ने आया है, जमीन को पकड़, नदी की जबान कुन हो जा तो हो रही है। जमीन को ऑर्डर कौन दे सकता है, अरे खादिम को खादिमा को ऑर्डर आका दे गया बेशक, अगर ये जमीन नबी की खादिमा नहीं थी तो ऑर्डर को फॉलो कैसे किया। मालूम हुआ मुस्तफा खालिक़े कायनात के नाइब अकबर हैं और सारी कायनात अल्लाह क्या लश्करी है, अल्लाह की फौज है। कुरान फरमाता वलिल्लाहि जुनूदु समावाति वल अर्ध, जमीन भी अल्लाह का सिपाही है और आसमान भी अल्लाह का सिपाही है, और जो अल्लाह का नाइब है वही तो कमांडर है, और जो फौज होता है कमांडर के आर्डर को फॉलो। उन्होंने फरमाया या अर्दो खुदी ये जमीन पकड़ ले, जमीन ने सुराका के दौड़ते हुए घोड़े की खुर को ताप को ऐसे जैसे मैग्नेट लोहे को चिपका लेता है ऐसे ही जमीन ने घोड़े के पांव को चिपका। सुराका यूं देखा यूं देखा, घोड़ा बुक क्यों गया है, चाबुक मार रहा है लेकिन कैसे हटे। अरे जब खाजा राजा पृथ्वी के ऊंट को कहे चिपक जा तो चिपक गया, बेशक वहां तो नबी की जबान है, नबी के जरिए खाजा को भी ये ताकत मिली,
बेशक
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े को पकड़वा दिया, सुराका को पसीना आ गया, कहा माफी मांगता हूं, छोड़ दीजिए। हुजूर मुस्कुराए कि अब ये आतंकवादी जो है टेररिस्ट है, मुझे पकड़ने आया है, लेकिन जब ये सरेंडर हो रहा है तो रहमतुल्लिल आलमीन माफ भी कर रहे हैं। या अर्दो रुकी है, ए जमीन छोड़ दे। जैसे ही कहा जमीन ने छोड़ दिया, चलने लगा। तीन मर्तबा ऐसे ही हुआ। अल्लाह ताला फरमाता हो जा तो हो जाती है वो चीज। नबी अल्लाह के हुक्म से कहते हैं हो जा तो हो जाती है वो चीज, और फरमाते मत हो तो नहीं होती। ये अल्लाह ताला की बारगाह से मुस्तफा को ताकत मिली। आला हजरत फरमाते हैं ये ताकत हुजूर के सदके में गौसे आजम को भी मिली। बेशक गौसे आजम को भी मिली है। क्या शान है, एक मरतब बगदाद में ले गए, सारे लोग मरने लगे। हजरत मुल्ला अली कारी नुज़हतुल ख़वातीर में फरमाते हैं कि एक एक दिन में 500-500 लोग मरते थे, जनाजा उठता था। बगदाद उजड़ गया। बगदाद की अजीब किस्मत है, हर दौर में उजड़ा है और फिर आबाद हुआ है।
बेशक
अब भी उजड़ गया है, इंशाअल्लाह फिर वह आबाद
होगा।
हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं लोग गौसे आजम की बारगाह में आए, अल मदद या गौस। मस्जिद में नहीं गए, देखो उस सब जमाने में सुन्नी थे, अल मदद या गौस वाले थे। अब बिगड़ गए हैं, मस्जिद थी ना, बगदाद में चले जाते, वजू करते, दो रेकात नमाज पढ़ते, रोते गिड़गिड़ाते, मौला तानून ताउन की बीमारी, प्लेग की बीमारी को दूर फरमा दे। बड़े बड़े उलमा सूफी मशायखे इजाम जैसे उलमा थे वहां पर, खाजा शेख साहबुद्दीन सोहरवर्दी जैसे सिलसिले सोहरवर्दिया के इमाम मौजूद थे, सब थे, लेकिन कोई मस्जिद में नहीं गया। सीधे गौसे पाक के पास आए, फरमाया क्या हुआ, हुजूर प्लेग आ गया, 500-500 लोग मर रहे, खानदान का खानदान उजड़ गया। तो मैं मत घबरा, जाओ हमारे मदरसे के लॉन में जो घासे हैं क्रॉस है उसको पीस करके यूज निकाल कर बीमार को पिला
दो,
कुन हो जा, घास इलाज बन रही। ये सब आम मेरे गौसे पाक में, घास की करामत नहीं है, मेरे गौसे पाक के ऐलान की करामत। लोग घास खिलाने लगे, जितने ताउन वाले थे सब अच्छे हो, देहात वाले आए, घास खत्म। गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे, हुजूर हमारे यहाँ लोग बीमार हैं, घास को एक चिंता भी नहीं मिल रही है। पर मैं घबराता क्यों, मेरे कुएं का पानी जाकर पिलाना। लोगों ने कुएं का पानी पिलाना शुरू किया, सबका ताउन था, प्लेग था, सबका खत्म हो गया। ये ताकत जमाने गौस में किसके जरिए मिली, मुस्तफा के जरिए। अहद से अहमद और अहमद से तुझको सब कुन मकुन हासिल है। जो चाहे कह दे हो जा तो हो जाए, कहे मत हो तो नहीं हो। ये है मेरे गौस आजम का अजीम मकाम, जिसकी जिनकी हम 11वीं मनाते। लोगों 11वीं मनाना ये उस बारगाह हमें भीख मांगना।
बेशक
हम भिखारी हैं ना, जब कोई भीख मांगने आता है हमारे सैयद यूसुफ साहब के पास आए तो फौरन नहीं बोलता बाबा दो पैसे दो। अच्छे भिखारी जो होते हैं पहले वो अच्छी नात पढ़ते हैं और दुआ देते हैं, तेरा बाल बच्चा जीता रहे, जुग जुग जिए, तेरा ये मिले, तुझको वो मिले, हज मिल जाए, खूब तारीफ करता है। तारीफ क्यों, ये तारीफ भिखारी इसलिए करता है कि हम हमारे हजरत इस तारीफ के भूखे नहीं है। वो तारीफ इसलिए कहता है कि सुन करके इनको रहम आएगा तो 10 रेंट मेरे हाथ पर रखते हैं। है ना, मेरे गौसे पाक तुम्हारे बिरयानी के भूखे नहीं है, माफ करना
जी,
तुम्हारी मनकबत के ख्वाहिशमंद नहीं है, इशाले सवाब की उनको जरूरत नहीं है। अरे वो तो उनकी निगाह ऐसी है कि अगर गुनहगार को देखे तो उसकी झोली सवाब से भर जाए। वो हमारे बिरयानी और दावत के भूखे नहीं है। ये तो हम भिखारियों के मांगने का एक हसीन तरीका है। अकबर बादशाह बहुत बड़ा बादशाह हमारे इंडिया का सम्राट मुगल जिसको कहते थे, वो बादशाह शिकार करते एक देहात में गए तो एक देहाती उसको मिला। गर्मी का जमाना, अकबर ने कहा पानी मेरे पास नहीं है, पानी पिला दे। तो वो गन्ने का जूस लेकर के आया और अकबर को पिलाया, बिठाया। एक झोपड़ी थी, उसको क्या मालूम कि अकबर है बादशाह है, उसकी खातिर मकान मोटी मोटी रोटी वगैरह पता करके खिलाया उलाया। अकबर बहुत खुश हुआ तो पूछता है भाग तेरा नाम क्या है? अकबर ने कहा मेरा नाम अकबर। अच्छा, अकबरवा भाग, वहां की बोली में अकबरवा भाग। तो अकबर ने कहा आगरा आओ और तुमको हम इनवाइट करते हैं, हमारे यहां तुम्हारी दावत होगी। उसने पता एड्रेस सब ले लिया देहाती ने, उसके यहां ककड़ी खीरा, ककड़ी बोलते हैं ना, वो तैयार हुई, कुछ गन्ना कुछ चने देहात की चीजें, वो एक मैले कपड़े में बांध होंद करके कंधे पर रख करके डंडा लेकर के और वहां पहुंचा आगरा। सबसे पूछता अकबरवा भा का घर कहाँ है? बोले अकबरवा भा। तो किसी ने कहते हैं अकबर बादशाह को तो नहीं पूछ रहा। अरे बोले खबरदार गर्दन मार देगा वो यहाँ का बादशाह। बोले हम बादशाह उसे नहीं जानते, वो तो हमारा मित्र है, हमारा फ्रेंड है अकबरवा भा, उसका मकान बताओ। तो लोगों ने लाल किला बताया। बोले इतना बड़ा मकान मेरे दोस्त का? जाकर के कहा कि मैं फला देहात से अकबरवा भा से जाके बोल दो कि तेरा दोस्त आया है। बादशाह समझ गया कोई देहाती आया है। वो गन्ने के जूस का मोहताज नहीं था बादशाह, लेकिन पिला दिया, बादशाह खुश हो गया। उसको बुलाया, ये मैला कुचैला देहाती कपड़ा पहने हुए जब दरबार में पहुंचा तो बादशाह को देखा ताज पहने हुए, जर्क बर्क लिबास, तख्त शाही पर बैठा है। देख करके हैरान रहा, कहा दोस्त हैरान मत आ, मेरे बाजू बैठ। जहां उसके मिनिस्टर को जगह नहीं, एक मैले कुचैले देहाती को बिठा रहा है सिर्फ उसका देहातीपन, उसका अंदाजे, उसका भोलापन, इतना बादशाह को प्यारा हुआ। आकर के तख्त पर बैठ गया। अकबरवा भा कैसे हो, कैसियत है? अकबर मुस्कुराया। फिर उसने अपनी ककड़ी चना और गन्ना ये खोल के कहा ये मैं तेरे लिए गिफ्ट और तोहफा लेके आया हूँ। बादशाह बहुत खुश हुआ और जब जाने लगा तो सोना चांदी हीरे जवाहरात डायमंड उसके कपड़े में बांध करके बादशाह ने, समझाया आपने कुछ?
वाह वाह वाह।
बादशाह उसके गन्ने और उसके शुगर केन का मोहताज नहीं था, सिर्फ उसकी अकीदत को देख रहा है, गमार है लेकिन कुछ लेकर आया है। तो अब उसके बदले में डायमंड दे रहा है। मैं अर्थ करना चाहता हूँ, अकबर डायमंड देता था, मेरा दोस्त जन्नत अता फरमाता है। इसलिए हम यादहमी करते हैं भाई, जिसको जन्नत का डायमंड लेना है वो दोस्त की यादहमी कर। हम तो गमार हैं, बेपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा गौस वो है जिसको सब कुन मकुन हासिल है जनाबे मुस्तफा के जरिए उनकी बारगाह में। हम ये सब मामूली मामूली चीज लेके आते हैं, एक दिन मेरे गौस ने अगर कबूल कर लिया तो खुदा की कसम जिंदगी के सारे दरिद्र दूर हो जाएंगे और हम वहाँ पहुँचेंगे नौजवान मिन गफूर रहीम के जन्नत में अल्लाह ताला हमारी मेहमानी फरमाए। ज्ञानी का ये फायदा है, जो करता है उसे मुबारक और जो नहीं करता है उसको उसके हाल पर छोड़। आप खुद कीजिए, अपने बच्चों को इसके लिए तैयार कीजिए, ऐसा अकीदा दीजिए कि ये वो रास्ता है जिस पर सूफिया इकराम औलिया इकराम चले। ये जन्नतियों का रास्ता, जन्नत हासिल करने का रास्ता। गौस को मनाना जन्नत से दूर होना नहीं, गौस को खुश कर लेना जन्नती बन जाने का एक बेहतरीन। मेरे दोस्त, इसलिए आला हजरत फरमाते हैं अहद से احمد اور احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے. بس ہم تو ان کی نگاہ کرم کے بھکاری ہیں. مولا تعالیٰ ہم سب کے اس نذرانے عقیدت کو قبول کرے اور اس کے صدقے میں میرے غوث جو آپ کو دینا ہے ہماری جھولیوں میں ڈال. ہماری جھولی میں آپ کا ایک ذرہ بھی پڑ گیا تو ہماری آخرت بھی سنور جائے گی, قبر بھی نور ہو جائے گی, دل بھی چمک جائے گا. چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, ہمارا چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, سب کا دل چمکا دے چمکانے والے. ہم اس لیے اندھیرا لے کر آئے ہیں اور گیارہویں کے صدقے میں اجالا لے کر کے گئے. وما علینا الا البلاغ.